पार्वती बोली, बाबा जी अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब ज्ञात हो गया, आपकी कलई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषता उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ, यदि आप यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परम धर्मा परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्गत हो, यहाँ आए हो और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा लेकर छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्मा है, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है, समस्त गुण के जिनके स्वरूप भूत है, उनकी जाति कैसे हो सकती है। वह भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार है, फिर पूर्ण परमात्मा को और किसी विद्या से काम कैसे कर सकते हैं। पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्चा रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके समान उत्तम प्रभु द्वारा कौन है जो सबके आदि कारण है। उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तोल कैसे हो सकता है। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा कारण क्या हो सकता है। जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंकर कहते हैं, और भगवान भजन से ही जीवन मृत्यु को जीत लेता और निर्भय हो जाता है। इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय मंत्र नाम प्रसिद्ध होता है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु लोक तथा ब्रह्मा लोक और देवता को प्राप्त हुए हैं। शिवजी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ है, वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। उन महादेव के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करे। यदि शंकर की सेवा ना करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है, और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती है कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाए, उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। यद्यपि यह मांगलिक कहीं जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव ने विकार कहाँ से आ सकता है। जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा है, वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता है तो उनके शरीर में झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सर पर कैसे धारण करते हैं। अतः शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता भर्ता और हर्ता होते हैं तथा निगुण रूप से शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जान सकते हैं। ब्रह्मा परमात्मा शिव का जो निगुण रूप है, उसे आप जैसे भयमुक्त लोग कैसे जान सकते हैं। जो दुराचारी और पापी हैं, वे देवताओं से भयग्रस्त होकर जाते हैं, ऐसे निगुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यह शिव की निंदा करता है, उसके जन्म का भर सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है, और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागनी होना पड़ा है। शिव द्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, शिव द्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना। भगवान रुद्र को तू जैसा जानता है वैसा क्यों नहीं कहा, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों ना हो। सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार के वे भगवान शिव ही मेरे अभिष्टम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की बात तो अलग है क्योंकि वे सदैव काल के अधीन है। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्व विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वसल सर्वेश्वर शिव की अपने परमेश्वर की तपस्या करके मैं अनुग्रह उनको प्राप्ति के लिए पाना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी भगवान ब्राह्मण जो ज्यो की कुछ फिर कहने लगे वो उद्गत हुआ। त्यों ही शिवा में असक्ति होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई। पार्वती अपनी सहेली विजया से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा, सखी इस अदम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करें। यदि वे ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य त्याग दे और स्वयं ही निंदा के स्थान में शीघ्र दूर चले जाए। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण वे वैद्य है नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुख बंद कर दीजिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान पर शीघ्र चले जाएंगे, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर उमा ने ज्यों की अतियंत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात रूप में प्रकट हो पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुख नीचे कर लिया। तब भगवान शिव ने उनसे बोले, प्रिय मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी, अब मैं फिर तुम्हारा ही त्याग करूंगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अनहित नहीं है। देवी आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य भी मुझे मोह लिया है, अब तुम्हारे बिना एक भी क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम मेरी सनातन पत्नी हो। गिरिराज नंदिनी महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझे स्वजन अपराध को क्षमा कर दो। शिवे तीन लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागरणी मुझे तुम्हारी कोई और जैसी नहीं दिखती। मैं सर्वदा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय मेरे पास आओ और मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ में शीघ्र ही निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादेव महादेव जी ऐसा कहकर पार्वती देवी आनंद मग्न हो उठे। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनिश्रेष्ठ सती साविधि पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है।